भुवन में सार, गीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। ओके, हम लोग आगम के नए को पढ़ रहे हैं। इसके ब्रॉड क्लासिफिकेशन आर द्रव्यार्थिक नए एंड पर्यायार्थिक नए। द्रव्यार्थिक नए जो द्रव्य को फोकस करके कथन करे, पर्यायार्थिक नए जो पर्याय को लक्ष्य करके कथन करे। हम लोगों ने 7 पाठ किए इसके। क्या क्या, कौन कौन से? नैगम, संग्रह व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 प्रकार के नए हैं और हम एक एक करके जा रहे हैं। तो अभी हम एक साथ उनके नाम भी याद नहीं कर रहे हैं। नैगम नए ने क्या बोला, कौन बताएगा? व्हाट डज नैगम नए सेज? एनीवन?
निगम नहीं, द्रव्य का अस्तित्व दिखाता है, इट मेक्स अस अवेयर ऑफ पास्ट और फ्यूचर पर्याय।
हाँ, तो इट गिव्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्य और इट रेफर्स टू द्रव्य यूजिंग पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर पर्याय। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल इसका?
अंजन चोर का आपने दिया था,
हाँ,
वो अभी हम अंजन चोर से वो रिफर करते हैं, मगर वो तो उसका वो पास्ट था।
तो हम मोक्ष में कौन गया? अंजन चोर वाला, पर्याय वाला नहीं गया, बट वील ऑलवेज सेंड, वील सेंड, इट विल नॉट बी अ रॉन्ग थिंग टू से। हम बोलेंगे लेकिन वो गलत भी नहीं होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वो कोई मुनिराज है, वो मोक्ष में गए हैं, अंजन चोर नहीं गया। लेकिन नैगम ने हमने उसके पास्ट का सुपर इम्पोजिशन प्रेजेंट में किया, एंड दैट्स हाउ हमने उस द्रव्य को याद किया। हमने द्रव्य को याद किया, उसकी पर्याय को याद नहीं किया। हमारे मन में कभी क्लिक नहीं होता कि कोई चोरी करते करते मोक्ष गया होगा, अंजन चोर। हम जानते हैं कि उसने तपस्या करी होगी, तब किया होगा, बट स्टिल वी आर रेफरिंग चोर, वी आर सेइंग चोर मोक्ष जाएगा। बट जस्ट इमेजिन, आप किसी अजैन के सामने जाकर बोल दो हमारे यहाँ तो अंजन चोर मोक्ष गया, तो वो बोल सकते हैं तुम्हारे यहाँ चोर भी मोक्ष चले जाते हैं। दे कैन आस्क नो, लाइक वी से के श्वेतांबरों में वो मल्ली बाई थी, मल्ली बाई, मल्लीनाथ भगवान को मल्ली बाई बोलते हैं, एंड वो क्या कर रही थी, वो झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते उनको मोक्ष हो गया। सो दैट्स हाउ उनको केवल ज्ञान हो गया झाड़ू लगाते लगाते। क्या किया, कुछ नहीं किया, तो हमको कितना अजीब लगता है सुनने में। वो उन्होंने नैगम नय का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने तो सीधा सीधा जो देखा वो बता दिया, कुछ भी इमेजिनेशन से। बट हमारे यहाँ अब यदि कोई जिसको नहीं पता है कि कैसे मोक्ष जाते हैं, हमने बोलते भैया अंजन चोर मोक्ष गया है, तो वो बोलेगा तुम्हारा कैसा धर्म है, चोरों को मोक्ष पहुंचा देता है। सो ही मे से दैट, राइट? सो इट्स नॉट एप्रोप्रिएट टू यूज दिस नैगम नय व्हेन अ पर्सन डजंट नो अबाउट यू नो द्रव्य का अस्तित्व इन इट्स डिफरेंट फॉर्म। डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? यदि सामने वाले को पता ही नहीं है कि यार अंजन चोर मोक्ष नहीं गया, अंजन चोर वाला जीव मोक्ष गया है, और आप उससे बोल दो अंजन चोर मोक्ष गया है, तो ही माइट काउंटर आर्ग्यू, मैं भी इस पर मतलब चोरी कर सकता हूँ, आप साध्य सिंह छोड़ने की बात क्यों करते हो, क्योंकि उसको करते करते एक जन मोक्ष चला गया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो नैगम नय, टू अंडरस्टैंड दिस सूत्र ऑफ आगम, दिस कथन ऑफ आगम इन अ राइट डायरेक्शन। यदि आप बिना इस नय के यदि सीधे आप लगा दोगे, तो आप सीधे सीधे यू नो मुझसे डिबेट कर सकते हो, और आप मुझसे डिबेट करोगे, मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि हाँ चलो चोरी करते करते मोक्ष जाते हैं, और मैं 10 आगम के प्रमाण ला दूंगा कि अंजन चोर मोक्ष गया, अंजन चोर मोक्ष गया, अंजन चोर मोक्ष गया। सब कह रहे हैं चोर मोक्ष गया, मतलब मैं भी चोरी करते करते मोक्ष जा सकता हूँ, बट दैट वुड बी अ कुतर्क, वो आगम को सही समझना नहीं होगा। दिस कथन इज बेस्ड ऑन नैगम नय, नैगम नय के पास पावर है कि वो पास्ट पर्याय को प्रेजेंट में सुपर इम्पोज करके प्रेजेंट के द्रव्य को बता सकता है, एंड दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग। जैसे आप महावीर भगवान की जय बोलते हो, वो अभी सिद्ध है, महावीर नाम भी नहीं है उनका, बिकॉज नाम तो जब तक आपके पास अघातीय कर्म से शरीर था तब तक था, तो वो सिद्ध हो गया, तो कोई नाम नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, येट स्टिल हम लोग रोज महावीर भगवान की पूजन करते हैं, तो उनकी पास्ट पर्याय की पूजन करते हैं, प्रेजेंट पर्याय की नहीं करते। बट हम उनके प्रेजेंट द्रव्य की पूजन करते हैं, पास्ट द्रव्य की नहीं करते, थैंक्स टू नेगम ने। ठीक है, एनीबडी हैज डाउट इन नेगम ने? किसी को भी
नहीं?
ओके, सेकंड वाज संग्रह ने, सेकंड का क्या था? संग्रह ने था। संग्रह ने, व्हाट डज संग्रह ने डू? संग्रह ने, संग्रह मतलब कलेक्शन, कलेक्टिव, वो सबका ग्रुपिंग करता है। ठीक है, तो हम सबको क्या बोलेगा? हम लोग सब क्या है? हम लोग द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है। तो ये तीन लोग कैसा है? ये द्रव्य में है। आपने एक नाम सुना होगा, आई डोंट नो आप मानस आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, समीर अर्जुन, बट यू मस्ट हैव हर्ड बड़े लोगों ने, एक महासत्ता होती है और एक अवांतर सत्ता होती है। राइट? आप लोगों ने और किसी ने सुना है महासत्ता अवांतर सत्ता? जब प्रवचन सार आप लोग ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें उसमें महासत्ता अवांतर सत्ता। तो व्हाट इज महासत्ता? महासत्ता इज हम सबका सादृश्य अस्तित्व, वहां पर जो शब्द है, स्वरूप अस्तित्व एंड सादृश्य अस्तित्व। सी, आप यदि इस पूरी दुनिया को देखोगे तो आपको हर जगह एग्जिस्टेंस 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 दिखेगा। पुद्गल एग्जिस्ट, जीव एग्जिस्ट, धर्म अधर्म, आकाश, एवरी सब्सटेंस हैज अस्तित्व नाम का गुण। सबके पास अस्तित्व नाम का गुण है। तो एवरीबडी हैज कॉमन एग्जिस्टेंस। जितना पुराना मेरा आत्मा है उतना ही पुराना ये पुद्गल परमाणु है, क्योंकि दोनों अनादि अनंत है। उतना ही पुराना धर्म द्रव्य है, उतना ही पुराना अधर्म, उतना ही पुराना आकाश, उतना ही पुराना काल द्रव्य। सारे के सारे द्रव्य हमेशा से हैं। सबके पास एक सा स्वभाव है, स्वरूप की बात नहीं कर रहे। सबके पास, यानी कि सब लोग द्रव्य से, सबके पास गुण होते हैं अनंत अनंत, और सब गुणों से अपनी पर्यायों को करते हैं। सो बेसिक फंक्शनिंग, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ ईच द्रव्य इज सेम। हाँ, गुण अलग अलग क्वालिटी के हैं, दैट अग्रीड। हमारे पास ज्ञान दर्शन है तो उसके पास स्पर्श रस गंध वर्ण है, बट हाउ दिस मशीन वर्क इज सेम एज देयर मशीन इज वर्किंग। उनके भी गुण प्रति समय परिणमन करते हैं, मेरे गुण भी प्रति समय परिणमन करते हैं। सो फंक्शनिंग की अपेक्षा तो हमारे कोई अंतर है नहीं। Are you able to see? See, दो प्रकार की टेलीविजन है, एक HD है, एक ब्लैक एंड व्हाइट है। दे बोथ आर टेलीविजन, ओके, दे बोथ हैव डिफरेंट क्वालिटी, राइट? ठीक है, एक HD कलर्ड है, एक ब्लैक एंड व्हाइट है, एक बहुत स्लीक डिजाइन है, एक बहुत बड़ी है, पुराने जमाने की है। बट इफ आई आस्क यू विच वन ऑफ देम इज अ टेलीविजन, विच वन ऑफ देम इज अ टेलीविजन? हेलो, बोथ ऑफ देम आर टेलीविजन, राइट? तो टेलीविजन कहना इन दोनों को, दिस इज द वर्क ऑफ संग्रह ने। उसने उनके सारे डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया। वो HD है, स्लीक है, ये बड़ी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इट डजेंट केयर फॉर दैट। इट सेज ओके, दोनों कुछ दिखाने का काम करते हैं, दे बोथ हैव बेसिक सिमिलर फंक्शनिंग, दे बोथ आर सेम। तो संग्रह ने उनको कलेक्ट कर दिया, उनके सारे डिफरेंसेस को इग्नोर करके एक कॉमन थ्रेड पकड़ा, विच इज टेलीविजन, ओके। ऐसे ही हमारे भगवान ने सारे द्रव्यों के सारे अंतरों को भुलाकर एक कॉमन थ्रेड पकड़ा, एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस की अपेक्षा हम सब क्या है? हम सब द्रव्य हैं। डोंट आस्क मी मैं कौन सा द्रव्य हूं, वो व्यवहार ने भेद करेगा कि मैं जीव हूं, ये पुद्गल है, वो धर्म है, वो अधर्म है। बेसिक संग्रह ने वुड से एवरीबडी इज अ द्रव्य, एवरीबडी इज अ सब्सटेंस। तो संग्रह ने का विषय महासत्ता है, व्यवहार ने का विषय अवांतर सत्ता है। महासत्ता एक होती है, आप जो हो वो ही मैं हूं। यदि हम अपनी एग्जिस्टेंस को देखें, अपने रहने को देखें, अस्तित्व को देखें, बट देन हम दोनों का अस्तित्व एक साथ होते हुए भी अलग अलग है ना। आपका ज्ञान गुण अलग है, मेरा ज्ञान गुण अलग है, हम लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही जमाने से रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, स्टिल वी हैव डिफरेंट एग्जिस्टेंस। एक साथ दिखने पर भी हम लोग अलग अलग हैं। जस्ट अ मोमेंट, हाँ जस्ट अ मोमेंट, गिव मी टू मिनट्स. हेलो, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी. ओके, वापिस वापिस. देखो, महासत्ता का जो प्रयोजन है, आई टेल यू व्हाट इज महासत्ता. महासत्ता ये बताना चाहती है, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बड़े हैं, आप बड़े द्रव्य हैं, या पुद्गल द्रव्य बड़ा है, कि धर्म द्रव्य बड़ा है, कि अधर्म द्रव्य बड़ा है, कौन सा द्रव्य सबसे बड़ा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट द्रव्य, नेम वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट द्रव्य.
हेलो, सारे ही द्रव्य समान है, सारे एग्जिस्ट करते, सारे ही द्रव्य है, ये तो जुदे जुदे हैं।
सारे मतलब चीज द्रव्य बड़ा नहीं है पुद्गल द्रव्य से,
नहीं?
राइट, एग्जैक्टली. महासत्ता का कहना ये है, आप यदि द्रव्यों के अंदर भेद लगाओगे और उनमें डिस्टिंक्शन करोगे, दिस द्रव्य इज डिफरेंट एंड दिस द्रव्य इज डिफरेंट, ओके, तो आप हमेशा उसके कारण प्रभावित होते रहोगे, ओ ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है. महासत्ता का कहना ये है, एवरी सब्सटेंस इज अलाइक, सब एक से हैं, सब एक सा काम कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी पर्याय रूप परिणम रहे हैं, सब हमेशा से हैं. तो ये वाली बात भूल जाओ कि कोई द्रव्य देखने लायक भी है, सब तुम्हारे जैसे हैं, तुम अपने आप को देख लो, तुमने दुनिया देख ली. तो महासत्ता को ग्रंथों में क्यों वर्णित किया, देखना, महासत्ता से ही वो अद्वैत व्यापी एक ब्रह्म निकला. वो लोग क्या मानते हैं, हर जगह ब्रह्म है, हेलो,
हाँ हाँ,
वो क्या मानते हैं हिंदू फिलोसफी में, ब्रह्म सब एक है, हम सब एक है, जो आप हो वही मैं हूँ, हम सब एक ब्रह्म के टुकड़े हैं, राइट, ये बोलते हैं ना वो. दैट इज एक्चुअली पार्शियली ट्रू. If you add a स्यात word to it, महासत्ता की अपेक्षा हम सब रियली एक हैं. हम और आप क्या, हम और ये शरीर, हम और ये पुद्गल, everything is one. From the point of view of existence, हम लोगों के बीच कोई difference नहीं है. You tell me, यदि आपकी family में आज कोई एक दिन बूढ़ा होता है, एक दिन किसी ने complete किया, तो सब एक साथ एक दिन बूढ़े होते हैं कि बच्चा थोड़े धीरे धीरे बूढ़ा होता है, बड़े लोग थोड़े जल्दी जल्दी बूढ़े होते हैं. इफ वन डे पासेस, इट इज सेम फॉर एवरीवन, नो?
यस.
एवरीबॉडी बिकम्स वन डे ओल्ड आफ्टर एवरी डे.
या
कॉन्स्टेंटली इट इज हैपनिंग. तो सारे द्रव्य, काल द्रव्य एक है, हाँ, काल द्रव्य एक, मतलब उसके असंख्यात लोक प्रमाण भाग है, बट एक समय में काल द्रव्य की सबकी एक एक पर्याय हो रही है. इन दैट वन पर्याय, जब वो एक समय में हो रही, उसी समय सारे द्रव्यों की एक साथ पर्याय हो रही है.
हाँ,
करेक्ट. तो आप द्रव्यों को देखने जाओगे, एंड आप ये अलग अलग भेद वाला चश्मा हटा दो थोड़ी देर के लिए. आप ये देखोगे कि सारे द्रव्य एक साथ अपना काम कर रहे हैं, एक साथ मॉडिफिकेशन हो रहा है. तो जैसे कि शरीर में पूरी स्किन एक कलर की होने से लगता है कि हमको पूरा एक ही द्रव्य है, बट वो अनंत द्रव्य है शरीर के, राइट?
हाँ.
उसी प्रकार महासत्ता में एक सा परिणमन देखने पर ऐसा लगता है कि सब लोग एक हैं. तो महासत्ता की अपेक्षा से बोला एक, सब एक साथ परिणमन कर रहे हैं एट वन टाइम, करेक्ट? एक डांस होता है, ठीक है? डांस, बहुत सारे लोग एक साथ डांस कर रहे हैं. देयर स्टेप्स आर सिमिलर, एकदम एक से स्टेप कर रहे हैं. एक ने अपना हाथ उठाया तो सबने अपना हाथ उठाया. सो देयर स्टेप इज वन और इट इज डिफरेंट. टेल मी,
पॉइंट ऑफ डांस,
हम बोलेंगे वो एक ही स्टेप कर रहे हैं. तो डांस की अपेक्षा दैट ग्रुप डांस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ओनली सिंगल स्टेप. बट इफ यू से इंडिविजुअली आई डिड अ डिफरेंट स्टेप, मानस डिड अ डिफरेंट स्टेप ऑन हिज ओन, दोज स्टेप्स लुक सिमिलर बट ऑन इंडिविजुअल बेसिस वी हैड टू डू इट इंडिविजुअली. बट वेन यू सी इट, इट लुक्स लाइक इट्स हैपनिंग ऑल एकदम एक साथ, करेक्ट? तो ये संग्रह में सारे डिफरेंसेस हटाकर कॉमन थ्रेड को लेता है, ठीक है? इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग मैथमेटिक्स में इक्वेशन बनाते होगे मानस, तो आपको मल्टीप्ल इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? 24, 36, 48 इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो इसमें से हम लोग कॉमन चीजें निकाल लेते हैं. हम इसमें कॉमन क्या निकालेंगे, आप लोग निकालते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लीकेटर, एलसीएम, एससीएफ, राइट? हम लोग को ये निकालना पड़ता है ना, व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज द कॉमन डिविजनल फैक्टर इन ऑल दीज डिफरेंट नंबर्स. एंड हम उस कॉमन को बाहर निकाल देते हैं और उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं. मानस, रिजुल, समीर, एम आई मेकिंग सेंस और आई एम सेइंग सम ऐसी? जो आप कॉमन निकालते हो, दैट कॉमन इज संग्रह नय का काम. एंड बाकी जो स्पेशल स्पेशल भेद बचते हैं वो व्यवहार नय करता है, ठीक है? संग्रह नय विल टेक आउट ऑल द सिमिलर थिंग्स एंड उनको एक एडजेक्टिव दे देगा. ये सब द्रव्य हैं, ये सब मनुष्य हैं, ये सब तिर्यंच है. तिर्यंच में तो हाथी भी तिर्यंच है, चींटी भी तिर्यंच है, निगोदिया भी तिर्यंच है. संग्रह नय को उससे मतलब नहीं है. संग्रह नय को बोलना भैया तिर्यंच गति नाम का, तिर्यंच गति आयु का उदय है, मतलब ये सब तिर्यंच है. व्यवहार नय फिर जाएगा, ये एक इंद्रिय तिर्यंच है, ये दो इंद्रिय तिर्यंच है, तीन इंद्रिय तिर्यंच है, ठीक है? तो महासत्ता में सबकी एग्जिस्टेंस सेम, अवांतर सत्ता में उन सबकी एग्जिस्टेंस सेम होते हुए भी उन सबकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट, ओके? तो इसको अवांतर सत्ता बोलते हैं. तो महासत्ता ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ संग्रह नय है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ संग्रह नय, इसको शुद्ध संग्रह नय बोल सकते हैं हम, ठीक है? एंड उसका जो अवांतर सत्ता से फिर जैसे जैसे भेद होता जाएगा वो व्यवहार नय है. तो सी, संग्रह नय और व्यवहार नय एक दूसरे के साथ चलेंगे और चेंज होते जाएंगे. कैसे होते जाएंगे? महासत्ता ने बोला सबको एक, तो तुरंत व्यवहार अवांतर सत्ता रूपी व्यवहार नय उसने बोला नहीं एक नहीं है, सब छह द्रव्य है, तो ठीक है. उसने बोला संग्रह नय जीव अनंत होते हैं, सॉरी जीव सब एक से हैं, तो तुरंत व्यवहार नय ने बोला नहीं अनंत होते हैं. तो फिर इसने बोला ठीक है भैया जीव अनंत होते हैं, तो उसने बोला नहीं अनंत नहीं होते, जीव भव्य और अभव्य प्रकार के होते हैं. इसने बोला ठीक है भव्य और अभव्य प्रकार के होते हैं, नहीं 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 मुक्त और संसारी प्रकार के होते हैं. तो ऐसे करते करते अवांतर एक नई नई चीज, सॉरी संग्रह ने एक नई नई चीज बोलता, कॉमन करके बोलता गया, और व्यवहार ने उस पर भेद करता गया, ठीक है? ये संग्रह नय और व्यवहार नय का काम है. एनी डाउट्स इन दिस?
नहीं.
ओके, वेरी गुड.
अनुपम जी, तो अवांतर सत्ता और व्यवहार नय दोनों एक ही?
नहीं, हाँ, फंक्शनिंग बोल रहा हूँ. अवांतर सत्ता ने महासत्ता पर डिवीजन किया. तो इफ वी टेक महासत्ता इन द प्लेस ऑफ संग्रह नय, तो अवांतर सत्ता बिकम्स व्यवहार नय फॉर दैट.
ओके,
ये आगम वाला व्यवहार नय, हमारा वो वाला व्यवहार नय नहीं. देखो कॉमन थ्रेड है, वहां पर भी व्यवहारने का सिर्फ एक काम था, भेद करना, राइट। वहां पर भी व्यवहारने द्रव्य के अंदर या तो भेद कर देता था या दो द्रव्य को एक दिखा देता था, राइट, सद्भूत एंड असद्भूत व्यवहारने। यहाँ पर भी व्यवहारने का काम भेद करना ही है, बट यहाँ पर भेद या आत्मानुभूति प्रयोजन नहीं है, समझने का प्रयोजन है। तो जहां पर संग्रह ने जैसे ही कॉमन टर्म देता है, व्यवहार ने तुरंत उसको एक्सप्लेन करने के लिए, टू गो इनटू द निटी ग्रिटीज ऑफ इट, उसके डिस्टिंक्ट के अंदर डिटेलिंग में जाने के लिए व्यवहार ने तुरंत खड़ा हो जाता है। कब तक व्यवहार ने चलता है? जब तक आप एक्सट्रीम पॉइंट पर ना पहुंच जाओ जिससे आपका तुरंत भेद संभव नहीं हो, तब तक व्यवहार ने भेद करता रहता है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। ये तीन होते हैं द्रव्यार्थिक नए, ये जो हमने तीन पढ़े, इन तीनों का काम प्रयोजन द्रव्य का ज्ञान कराना, इनको पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। ये पर्याय को देखकर बता सकते हैं कि द्रव्य है, बट इनको पर्याय का ज्ञान नहीं कराना है, इनको द्रव्य का ज्ञान कराना है, ठीक है। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, चींटी की रक्षा करो, तो हम लोग चींटी की पर्याय की रक्षा के लिए बोलते हैं कि उसके जीव की रक्षा के लिए बोलते हैं, द्रव्य की? टेल मी,
द्रव्य की।
द्रव्य तो अनादि अनंत है, वो तो मरते ही नहीं, उसको क्या बचाना, टेल मी। किसकी रक्षा करते हैं, द्रव्य की के पर्याय की?
तो पर्याय की।
नहीं देखो, यहाँ आगम में द्रव्य
के पर्याय है, इसलिए
जहाँ पर उसकी पर्याय है वहां पर उसका द्रव्य है। पर्याय और द्रव्य अलग अलग तो नहीं है, तो नहीं। आगम में हर जगह ये भेद नहीं होता द्रव्य का के पर्याय का। आगम में तो चींटी को ही द्रव्य बोलेंगे, आपको समझ में आ रहा है? चींटी ही द्रव्य है, चींटी कोई पर्याय नहीं है। आप जब उसको ज्यादा जानने जाओगे तो व्यवहार ने खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हाँ चींटी का शरीर पुद्गल है, चींटी की आत्मा वो जीव है, ऐसा वो बोल देगा। बट वहां पर आप चींटी के द्रव्य की या पर्याय की रक्षा नहीं, आप चींटी की रक्षा कर रहे हो। वहां पर हमें बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, क्योंकि वो आगम का विषय है। द्रव्य और पर्याय के भेद अपने द्रव्य में करने, क्योंकि हमको वो अनुभूति का विषय बनेगा, हमारा पर्याय बिना का जो द्रव्य होगा निश्चय नहीं का। बट चींटी का पर्याय बिना का द्रव्य हमारे किस काम का? चींटी को पर्याय से अलग आप देख लोगे तो हमें कौन सी अनुभूति हो जाएगी? हाँ, चींटी का ज्ञान हम कर सकते कि देखो ये एक जीव है, इसके अभी चींटी नाम की पर्याय है, कल को ये मनुष्य बन जाएगा तो पर्याय तो पूरी बदल जाएगी, लेकिन इसके द्रव्य और गुण नहीं बदलेंगे, बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेंगे। ये आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो। बट आगम का पर्याय को दिखाकर भी द्रव्य का ज्ञान कराना प्रयोजन है। द्रव्य मतलब प्रमाण का द्रव्य, पर्याय सहित वाला द्रव्य। तो भाई चींटी की पर्याय वाला जीव, हम उसकी रक्षा करते, क्योंकि जीव को दुख होता है ना, वो दुख जीव को, ये घात तो हो गया तो चली जाएगी पर्याय घात होकर, बट उसके कारण जीव दुखी होगा, उस दुख से बचने के लिए हम जीव की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये तीन द्रव्यार्थिक नए हैं। यहाँ पर द्रव्य, द्रव्य इज द मेन जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं हम पर्याय नए पर। पर्याय नए पर नेक्स्ट इज ऋजु सूत्र नए। ऋजु सूत्र नए क्या करता है? ऋजु मतलब होता है सरल या प्रेजेंट या समथिंग विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़े, देख लिया बस हो गया। तो ऋजु सूत्र ने ये कहता है कि जो प्रेजेंट पर्याय हो रही है ना, उस प्रेजेंट पर्याय को आप एक्सेप्ट कर लो, ना पीछे का देखो ना आगे का देखो, जो वर्तमान में हो रहा है दैट्स इट, द्रव्य उतना है। ऋजु सूत्र ने कुछ कुछ इधर उधर के काम नहीं करता, वो कुछ नहीं सोचता कि यार ये पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है, आप प्रशस्त क्रिया कर रहे हो कि आप प्रशस्त क्रिया कर रहे हो, ये उसको नहीं बताना। उसको ये बताने कि हाँ भैया ये बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, अब वो स्वाध्याय करना अच्छा है बुरा है, पुण्य कर रहा है पाप कर रहा है, अच्छे से कर रहा है प्रमाद से कर रहा है, ये सारी बात रिजु सूत्र ने कोई डिटेलिंग में नहीं आता. इट्स ओनली फंक्शन जस्ट लाइक सीसीटीवी कैमरा. ओके, द ओनली फंक्शन ऑफ सीसीटीवी कैमरा इज टू कैप्चर वॉट एवर इज हैपनिंग. चोरी हो रही है तो सीसीटीवी कैमरा कुछ करने नहीं लगेगा आपका कि कुछ नया करने लगे. आप सीसीटीवी कैमरा के सामने बैठकर देख रहे हो और कोई चोरी कर रहा है तो आप जाके एक्शन ले सकते हो. आप पुलिस को फोन कर दो, भागो, देखो, रोको. सीसीटीवी कैमरा वोंट डू एनीथिंग अबाउट इट. व्हाट वुड इट डू? इट वुड जस्ट टेल यू व्हाट एवर इज हैपनिंग. ऋजु सूत्र ने सिर्फ वो वाली बातें करेगा जो हो रही है. दैट्स इट. समझ में आया? ऋजु सूत्र ने आपको प्रेजेंट कंडीशन से अवेयर कराता है भैया क्या हो रहा है इस द्रव्य में. सिर्फ इतना बताता है वो. कोई क्वेश्चन इसमें?
नहीं.
ओके, वेरी गुड. अब नेक्स्ट आ रहे हैं. अभी हम ऋजु सूत्र नए को अभी देखना, बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए भी हम लोगों ने इसको ज्यादा स्पेशली लिया नहीं है. अब देखो आप, नेक्स्ट इज शब्द में. अभी शब्द में क्या कहता है? आपकी ग्रामर होती है, ग्रामर इज एम आर डज डू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये सब कुछ रहेंगे उसमें. सो व्हेन यू यूज रॉन्ग ग्रामर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है. इफ यू यूज अ रॉन्ग कॉमा इवन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है सेंटेंस में, पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है. अब शब्द ने क्या करता है, इसने इसे संख्या कारक मतलब जितने भी ग्रामर के फॉर्म्स ऑब्जेक्टिव उसका पर्याय सॉरी वर्ब का फॉर्म प्रीपोजिशन हेल्पिंग वर्ब्स ये सारे के व्यभिचार को जो दूर करता है उसको शब्द नहीं कहते हैं.
I didn't understand that.
I'll tell you. Just give me a second. जैसे कि संस्कृत की बात करते हैं, ओके? संस्कृत में तीन वर्ड है, एक दार, एक भार्या और एक कलत्र. इन तीनों का मतलब एक है, पत्नी. ठीक है, सुतदारा होए न सीरी, पुत्र कलत्र और भार्या, ये सब पत्नी होती है. दार, भार्या, कलत्र, ये तीनों क्या है? पत्नियां हैं. पत्नियों की तो स्त्रीलिंग होगी बराबर, बट जो दार वर्ड है दिस इज पुल्लिंग का शब्द है, इट्स नॉट स्त्रीलिंग का शब्द इन संस्कृत ग्रामर. भार्या इज स्त्रीलिंग का शब्द, इट्स मैस्कुलिन. ओके, दार इज मैस्कुलाइन, भार्या इज फेमिनाइन एंड कलत्र इट्स नपुंसकलिंग. दार का, भार्या का, कलत्र का, ये तीनों शब्द अलग अलग लिंग वाले होने से एक ही पदार्थ को बता रहे हैं, स्त्री को, पत्नी को. लेकिन शब्द ने क्या करेगा, इन तीनों चीजों को अलग अलग करेगा. वो बोलेगा नहीं भैया, यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया है इसका प्रयोजन कुछ अलग है, यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया है इसका प्रयोजन कुछ अलग है, यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया है. क्यों? क्योंकि इनके जो ग्रामेटिकल फॉर्मेशन है दैट इज डिफरेंट. दो देयर मीनिंग इज सेम, दो दे आर सिनोनिम, वो सिनोनिम्स हैं, येट देयर एग्जिस्टेंस इज विद अ पर्पस. उनका डिफरेंस है तो देयर इज अ पर्पस फॉर दैट डिफरेंस. तो ये जो शब्द नए है, ये शब्द नए बिल्कुल एकदम ग्रामर नेजी है, इसको आपका बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं करेगा. इट्स डिस्क्रिप्टिव. आपने जो कुछ भी बोला है, आपने कौन सा शब्द से क्या बोला है, जैसे कि मैं तत्वार सूत्र का पहला सूत्र लेता हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, याद है आप सबके पहला सूत्र? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन चीजें हो गई. सो इट्स सिंगुलर और प्लूरल, तीन चीजें. प्लूरल राइट, इट्स नॉट सिंगल, 1 2 3. तो यहाँ पर चारित्राणी ये संस्कृत में प्लूरल के लिए यूज होती है वर्ब. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मतलब तीन चीजें हो गई, प्लूरल हो गया. इन तीनों को क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग. मोक्ष मार्ग में यदि आचार्य देव लिखते मोक्ष मार्गाह बड़ा आ करते तो फिर ये प्लूरल होता, लेकिन उन्होंने मोक्ष मार्ग को सिंगुलर लिया, मोक्ष मार्ग छोटा वाला आ लगाया, तीन चीजें ली और तीन चीजों को उन्होंने सिर्फ सिंगुलर बोला। इसका अर्थ क्या हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग है, अलग अलग नहीं है। आप अकेली बोलो सम्यक दर्शन अलग है, बिल्कुल नहीं। सम्यक ज्ञान अलग से ले लें हम, नहीं। सम्यक चारित्र हम अलग से ले लें, नहीं। तो इंडिविजुअली ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तीनों एक साथ एक मोक्ष मार्ग है, राइट? तो ग्रामर के कारण सिर्फ उन्होंने वहां पर सिर्फ इतना लिया मोक्ष मार्ग, उन्होंने बहुवचन का प्रयोग नहीं किया, एक वचन का प्रयोग किया। उसके कारण देखो पूरे सूत्र ने सारी व्याख्याएं बदल दी। कोई लोग कहते थे कि हम अकेली चारित्र कर लेंगे, हमसे ज्ञान ज्ञान मत करवाओ और हमें मोक्ष हो जाएगा, तो वो जंगल में मुनि दीक्षा लेकर पहुंच गए। तो अमर स्वामी आचार्य कह रहे नहीं भैया, आपको बिना सम्यक ज्ञान के ये नहीं होगा, आप कितने ही चारित्र कर लो। किसी ने बोला भाई हम अकेली शास्त्र दे दो, हमसे तब वगैरह नहीं होता, हम पूरा पढ़ाई कर लेंगे। तो हमसे बोला भाई अकेली सम्यक ज्ञान से कुछ नहीं होता है, आपको चारित्र भी तो करना पड़ेगा। किसने बोला ना हमसे ज्ञान होता है ना चारित्र होता है, हमको तो भाई श्रद्धा हो गया, हम आत्मा, हम तो सिद्धों के जैसे हैं, हमने मान लिया हम जीव हैं। उससे बोला नहीं भैया, अकेले आप श्रद्धान कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बिना ज्ञान के आप श्रद्धान कर लो। तो सिंगल चीज को उन्होंने बिना यूज किए शब्द ने से क्या अर्थ निकला उसका? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तीन नहीं है, मोक्ष मार्ग एक है। ग्रामर के कारण इसका ये वाला अर्थ निकलता है, ठीक है? हेलो
जी,
पक्का? तो यदि आपको कभी कोई अर्थ अजीब सा भी दिखे, यदि उसमें ग्रामेटिकल भी कुछ मिस्टेक हो जाए आगम में, ठीक है, होती नहीं है, हो जाए, तो आप तुरंत शब्द नए के पास जाना, उससे उसकी ग्रामर सही करना और फिर अर्थ निकाल कर देखना। इफ वो अर्थ पूर्वापर से विरोध नहीं खाता है एंड इट मेक्स सेंस, देन आप उसको शब्द नए से जान सकते हो, राइट? तो आप उसको करेक्ट करने की आपको अथॉरिटी शब्द नए देता है। तो कितना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और एक ज्ञानपीठ है, भारतीय ज्ञानपीठ, उसमें हरिवंश पुराण छपा हुआ है, ठीक है? उसका जो इंडेक्स है अनुक्रमणिका स्टार्टिंग, उसमें सारे चैप्टर्स का उन्होंने इंट्रोडक्शन दे रखा है कि उस चैप्टर में क्या है। उसमें नेमिनाथ भगवान की कहानी हरिवंश पुराण पूरी, कृष्ण जी नेमिनाथ भगवान ये हरिवंश, ठीक है? तो उसमें पूरा सिस्टमेटिकली पूरा वो दे रखा है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो उसके एक चैप्टर की इंडेक्स में पढ़ रहा था, उसमें धीरे धीरे पढ़ता गया तो उसने एक टॉपिक लिखा था, देवों में वेश्याओं का वर्णन। किसका वर्णन? वेश्याओं का, वेश्या। अब देवगति में वेश्याएं तो होती नहीं है, तो मेरा फिर चक्कर है, मैंने बोला ये क्या हो गया। तो आई ओपन्ड दैट चैप्टर, जो मेन चैप्टर है, तो वहां पर क्या टाइटल था? देवों में लेश्याओं का वर्णन। किसका वर्णन?
लेश्या।
नाउ सी, वन वा की जगह ला आ गया और ला की जगह वा आ गया, पूरा अर्थ चेंज हो गया, राइट? इंडेक्स में मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग, बट बिकॉज ऑफ दैट यदि कोई अकेली इंडेक्स पढ़ता हो और इंडेक्स पढ़कर ही यदि डीप में जाने की उसकी तमन्ना ही नहीं और वो वहीं से प्रवचन करने लगे, वो तो गद्दी पर बैठ कर क्या क्या भूल जाए। देवगति में ये भी होता है, ये भी होता है, बट लेश्याएं छह होती है, वो तो हर गति में होती, कृष्णील का पोत पीत पद्म शुक्ल। तो शब्द ने वुड से दैट इफ समथिंग फिशी लुक्स, आपको यदि कुछ लगे कुछ अजीब सा है यहाँ पर, तो आप तुरंत पहले उसको ग्रामर से, सबसे पहले आपका पहला कर्तव्य उसको ग्रामर से सही करो और फिर उसका उससे सही अर्थ निकाल कर लाओ, और उसके बाद यदि वो अर्थ सही बैठता है तो आप वो वाला अर्थ लगाइए, और उसमें भी यदि वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो जो योग्य अर्थ वहां पर ग्रामर से होना चाहिए वो वाला अर्थ आपको निकालना पड़ेगा, ये शब्द नए है, ठीक है?
हाँ।
शब्द नए समझ में आया?
हाँ जी।
नेक्स्ट, समाभिरूढ़ नए। अब ये चारों लेवल का एक पूरा जुगल बनेगा, अपन उसको एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। समभिरूढ़ में क्या कहता है, जो भिन्न भिन्न अर्थों का उल्लंघन करके एक अर्थ को रूढ़ी से ग्रहण करे, जैसे एग्जाम्पल है गाय, गाय का मतलब होता है गमन करना, चलना। तो गमन तो हम सब करते हैं, हम सबको गाय बोलेंगे क्या? गाय यानी काऊ, वी ऑल नो। बट एक्चुअली गाय का मतलब, जैसे कि आप खाने की टेबल पर बैठे और आपने बोला मम्मी सब्जी दो, मम्मी ने फ्रिज खोला और पूरी की पूरी सब्जी निकाल के रख दी आपकी थाली पर, टमेटोज रख दिए बड़े बड़े, कैप्सिकम रख दिया बड़ा बड़ा, और वहां पर लौकी गिलकी सब रख दिया। ये मांगा था आपने?
नहीं।
आपने क्या मांगा था?
जो बनाई हुई सब्जी है।
आपने सब, अच्छा मम्मी ने सब्जी नहीं रखी क्या आपकी डाइनिंग टेबल पर, आपकी थाली में? उन्होंने भी सब्जी रखी, आपने भी सब्जी मांगी थी, गड़बड़ कहाँ पर हो गई?
जो हर रोज जो वर्ड होता है घर में सब्जी का।
समभिरूढ़ नहीं कहता है कि एक वर्ड के कई अर्थ हो सकते हैं, नो डाउट, बट आपको वो वाला अर्थ मानना है जो प्रचलन में हो, विच यू यूज ऑन अ डेली बेसिस। तो इट शुड नॉट हैपन कि मैं रोज मम्मी से सब्जी मांगता हूँ तो मम्मी तो वो जो बनाती है वो वाली सब्जी मुझको देते हैं, और आज मैंने मांगा तो मम्मी ने वो वाली सब्जी मुझको दे दी जो फ्रिज के अंदर रखी हुई थी बिना बनी हुई, तो ये गलत हो जाएगा। तो मम्मी ने मतलब समभिरूढ़ नय की जगह किस नय को पकड़ लिया? शब्द नय को पकड़ लिया। समझ में आया आपको? शब्द नय के हिसाब से मम्मी एकदम राइट है, सब्जी एक्चुअली वही है जो फ्रिज में रखी है, ये तो प्रोसेस्ड सब्जी है, इसको तो हमें और कुछ नाम देना चाहिए, वो तो हम लोग के पास नाम नहीं है ज्यादा, तो वी से ओके वी मेड वेजिटेबल, बट वो इंग्लिश में थोड़ा करी शब्द हो जाता है तो ठीक है, थोड़ा सही रहता है, हिंदी में तो सब्जी शब्द है उसके लिए, शाक बनाई है, सब्जी बनाई है। तो शब्द ने से मॉम इज नॉट रॉन्ग, बट यहाँ पर शब्द ने का प्रयोजन नहीं था, वी वर नॉट राइटिंग अ थीसिस, वी वर नॉट गिविंग अ लेक्चर, वी वर एक्चुअली डूइंग समथिंग रियल लाइफ, ठीक है। तो उस टाइम पर प्रयोजन क्या था? उस टाइम पर जो बनाई हुई प्रयोजन है वो था, तो उस टाइम पर मम्मी को उस वाक्य को समभिरूढ़ नय से समझना था, मम्मी मुझे वो वाली सब्जी चाहिए जो समभिरूढ़ नय से सब्जी बोली जाती है, जो शब्द प्रचलन में, देखो आपने सुना है रूढ़ी, रूढ़ी शब्द सुना है, प्रथा रूढ़ी कस्टम्स, ठीक है। क्या हुआ, एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, एक घर में शादी हुई, ठीक है, एक तो उसमें जो बेटे की मम्मी थी, लड़के की मम्मी, लड़के की शादी चल रही है, लड़के की मम्मी थी, तो उन्होंने क्या किया, शादी होनी थी तो शादी चल रही थी, फेरे होने वाले थे कि वहां पर एक बिल्ली मर गई, ठीक है, एक पास में बिल्ली मर गई, तो अभी तक किसी ने देखा नहीं था, तो उन्होंने बोला भैया क्या मतलब फालतू को जल्दी जल्दी क्या करो, बीच में बिल्ली के ऊपर उन्होंने एक उल्टा वो डाल दिया बर्तन जिससे बिल्ली ढक जाए, तुरंत डलवा दिया जिससे वो दिखेगी नहीं, छिप गई। अब ये वाली बात जो वो पत्नी है ना, जो नई नई बहू आ रही है उसकी, उसने देख ली, ठीक है, अब शादी हो गई, अच्छे से सब हो गया, बाद में फिर बिल्ली को अलग करवा दिया, बीच में अलग करवाते तो फिर सबके सामने बिल्ली को उठा के ले जाता, सबको दिख जाता, तो उन्होंने तुरंत ही वहां ढकवा दिया था उसको। अब क्या हुआ, बहुत टाइम बीता, 20-25 साल हो गए, ये जो लड़का है इसका भी बेटा हुआ, इस बेटी की भी शादी होनी थी, अब इस बेटी की शादी हुई, फेरों का टाइम आया, पंडित जी फेरे पड़ने लगे, तो उसकी जो मम्मी है, बेटे की मम्मी जो बहू थी 20 साल पहले, वो सडनली बोलते, अरे रुको 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 रुको, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले एक बिल्ली लाई जाएगी, बिल्ली को मारा जाएगा, बिल्ली का रखा जाएगा, उसको ढका जाएगा, फिर फेरे पड़ेंगे, हमारे यहाँ का एक कस्टम है। एंड देन ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, एंड दैट्स द प्रोसेस नाउ उस फैमिली की। तो वो हुआ किस कारण था, दैट वॉज एन एक्सीडेंट, एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, और एकदम उसकी मम्मी ने बिल्कुल वैसे ही किया था, एक बिल्ली थी उसके ऊपर कुछ ढका और उसके बाद फेरे स्टार्ट कराए, और इसमें वो सब देखा, तो शी थॉट कि हाँ ऐसा होता होगा इस घर में, And when actually she became mummy and she had uske son ka marriage, so actually those customs were followed. ये वाली बात कहलाती रूढ़ी, जो बातें apparently तो sense नहीं कोई बनाती कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, but उनका सिर्फ एक logic होता है कि हाँ यही चलता है. तो समभिरूढ़ ना यही बोलता है कि भैया अपना दिमाग मत लगाओ, दुनिया में अपना बिल्कुल मत चलाओ, कुछ ही मत चलाओ, दुनिया के लिए एकदम मूर्ख बन जाओ. दुनिया बोलती है गाय को गाय, तुम गाय को गाय बोलो. वहां पर तुम नई नई संस्कृति किताबें पढ़कर ये मत बोलो सामने से जो चलता है वो गाय, और तुमने किसी भी कोई एक अच्छी लेडीज जा रही थी उससे बोला देखो गाय जा रही है, पिटोगे वहां पर बहुत बुरा. क्यों? क्योंकि वो समभिरूढ़ से गलत है, एकदम गलत है. आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े ज्ञाता हो ग्रामर के और आपने शब्द नए से किसी को भी गाय बोल दिया चलते हुए, बट लोग आपको पागल बोलेंगे. क्यों? बिकॉज लोक में सीधे ये चलता है, यदि 100 लोग हैं उसमें से 99 लोग मूर्ख हैं और आप एक विद्वान हो, ठीक है, तो आप मूर्ख और वो 99 विद्वान है, दैट्स द रूल. वो जो 99 बोले वो वाला काम चुपचाप कर लो, वहां नेता बनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. समझ में आई वाली बात?
हाँ.
तो समभिरूढ़ नहीं कहता है कि आप शब्द नए से एक्यूरेट हो सकते हो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, आप एकदम सही हो, जो आप बोल रहे हो एकदम सही है, आप उसको ग्रामर की बुक्स में दुनिया को दिखा सकते हो, बट दुनिया इतनी बुद्धिमान नहीं है और वो आपको भी एक्सपेक्ट करती कि आप इतनी टॉलरेंस रखो कि जो समभिरूढ़ जो रूढ़ी से चला आ रहा प्रचलित अर्थ है उस अर्थ को आप ग्रहण करो, ठीक है.
हाँ.
देखो देव के कितने सारे अर्थ होते हैं, देव मतलब जो स्वर्ग गति के देव हैं वो भी होते हैं, देव मतलब जो इंद्र होते हैं उनको भी देव बोलते हैं, और देव हम बोलते हैं सच्चे देव अरहंत और सिद्ध देव हैं, बराबर. तो जैन दर्शन में जहां जहां पर देव बोला जाएगा देव को नमस्कार है, वहां वहां पर आपको क्या अर्थ लगाना है? समभिरूढ़ से जैन दर्शन में तो अरहंत और सिद्ध को ही देव बोला है. हाँ, देवगति में तो व्यंतर ज्योतिष सौधर्म ईशान ये सब भी देव हैं, बट रूढ़ी से जैन दर्शन की तो परंपरा रही है कि देव को नमस्कार हो मतलब अरहंत और सिद्ध दो ही देव हैं, तो आप वहां समभिरूढ़ से अर्थ लगाना, आप गलती मत करना वहां पर. समझ में आया समभिरूढ़ नये का सिग्निफिकेंस? ये वाला नये आपको प्रेजेंट टाइम से बिल्कुल एकदम अप टू डेट रखना चाहता है. आप यदि साउथ में जाओगे और यदि वहां पर आप दो मिनट, जैसे कि यहाँ पर जो तंडुल होता है इसके अलग अलग अर्थ है. आपको पता है सत्य के 20 प्रकार होते हैं, सच जो होता है ना सत्य, इसके 20 भेद होते हैं अलग अलग. एक देश सत्य होता है, तो आप लोगों को कई बार जब एटिकेट्स की क्लास होती तो आपको कोई कंट्री में विजिट करना हो तो उससे आपको पहले वो बोलते हैं कि आप पहले उसके पर सर्च करो कि उस कंट्री में एटिकेट्स क्या है. जैसे कि यहाँ पर इंडिया में हाथ को वेव करना इट्स नॉट अ बेटर एटिकेट देन हाथ जोड़ना, ठीक है, और कहीं कहीं पर हाथ को वेव करना ऑफेंसिव भी हो जाता है, कहीं कहीं पर गिफ्ट नहीं देना वो ऑफेंसिव हो जाता है, कहीं कहीं पर गिफ्ट देना वो ऑफेंसिव हो जाता है, राइट. तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग एटिकेट्स है. जैसे कि यूएस में आप किसी से मिलते हो तो आपको हैंडशेक वाला है, यहाँ पर आप किसी से मिले तो यहाँ पर यदि आप मेल और आप फीमेल के साथ हैंडशेक करते हो तो दैट डजंट कंसिडर गुड इन इंडिया, बराबर, यहाँ पर नहीं माना जाता, यहाँ पर हाथ जोड़ते हैं दूर से. यूएस में वो ही चलता है. तो इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ दैट विद द कल्चर ऑफ दैट कंट्री यू आर बाउंड टू यू नो कुछ गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ. तो ये समभिरूढ़ ये कहता है कि यू हैव टू बी अप टू डेट विथ वॉट आर द सोशल नॉर्म्स इन योर कंट्री और इन योर प्लेस ऑफ where your position, वहां पर you should know that, ठीक है, not just say कि चलो हमें तो आत्मा आत्मा पता है बाकी सब ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है. अब क्या हुआ, किसी के यहाँ डेथ हो गई, ओके, नहीं डेथ छोड़ो गंदी बातें, किसी को ये और भी गंदी बात है वैसे, बट किसी को लाइक बहुत एक्सट्रीम कैंसर हो गया, ओके, अब आप उसके पास जाओगे और उससे बोलोगे भैया वो बेड रिडन है ना, बेड पर लेटा हुआ है, और हम उससे बोले कि भैया आप रोज मंदिर क्यों नहीं आते हो, आपको तो रोज मंदिर आना चाहिए, मंदिर जाने से पुण्य का बंध होता है, रक्षाल भी करो आप ऐसा क्यों करते हो, आप तो रोज मंदिर आओ. तो ये वाली बात आप गलत नहीं कह रहे हो कि भैया सबको मंदिर आना चाहिए, बट आप ये वाली बात गलत जीव से कह रहे हो, इज नॉट इन पोजिशन. आपका उपदेश सच होते हुए भी बहुत झूठा है. दिस इज नॉट राइट. आप उसके पास जाकर सीधे बोलने लगो, भैया शरीर तो भिन्न है, वेदना क्या होती है, कुछ नहीं होता, ये वेदना वेदना सब झूठी है, आप तो आत्मा का ज्ञान करो. आपकी बात एकदम सही है, लेकिन आप वेदना में रहने वाले व्यक्ति से ये बोल रहे हो, तो थोड़ा सोचो. जिसको इतना दर्द है, जिसको देखकर भी सामने वाला जो उसको नहीं जानता उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, राइट? उसके दर्द को वो नहीं देख पाता, और आप इतने बड़े स्वाध्यायी होकर, अहिंसक होकर, उसके इतने परेशानी में आप इतना रूखा उपदेश देके चले गए, यार कोई बात नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है. आपको कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, आपको कुछ उसको देख के डर ही नहीं लग रहा है, तो ये गलत हो गया ना हमारे साथ, कुछ तो गड़बड़ है. बड़े से बड़े पापी लोग जिसको देखकर, यू नो, जिनका हृदय एकदम कांप जाता है, डर जाते हैं उसको देखकर, हम लोगों ने ऐसे प्लेनली उसको देख के अलग कर दिया, और हमने बोला बेटा वेद विज्ञान करो, आत्मा को अलग देखो. आपकी बात एकदम सही है, उसको वो करना चाहिए, लेकिन ये बोलने का तरीका, उपदेश एकदम गलत है, क्योंकि वो उस समय जिस अवस्था में है, उस समय में उसको दर्द है कि नहीं है, बिल्कुल है. उस समय वो दर्द को सहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल सहन कर रहा है. वेदना तो होगी, वो वितरागी तो है नहीं. मुनिराजों को भी जब उपसर्ग होता है तो वेदना होती है, लेकिन वो उपसर्ग में अपना उपयोग अंदर समेट लेते तो उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, मतलब उसकी तरफ उनका उपयोग नहीं जाता है, तो उसको संवेदना उनको नहीं हो पाती उससे. लेकिन हमारा तो उपयोग बाहर में है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समवन हु इज इन सो ग्रेट पेन टू, यू नो, कीप काम, ऐसा यू कैन नॉट डू दैट. तो आप उसके पास जाओ, उसके साथ दुख के लिए संवेदना प्रकट करो, उससे दुख पूछो, आपका भी हृदय नम हो कि मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, राइट? तो समभिरूण ने ये कहता है कि एक सा उपदेश हर जगह नहीं लगता, आपको कई जगह रूढ़ी से उपदेश देना पड़ेगा, ठीक है? आजकल फेमिनिज्म की इतनी बात चलती है, राइट? अब एक सज्जन जाएंगे और बोल देंगे, नहीं भैया जैन धर्म में स्त्रियों को मुक्ति नहीं होती, मुक्ति तो क्या है, स्त्रियां भगवान का अभिषेक भी नहीं कर सकती और कुछ भी नहीं कर सकती. आपने वाली बात एक सोशल प्लेटफॉर्म पे तो बोल दी, राइट? अब दुनिया को तो पता नहीं है क्यों नहीं करती, और उसमें ब्रह्मचर्य का दोष है, ऐसा कुछ भी नहीं कि स्त्रियां कम है और वो है और ये और वो, किसी को कुछ नहीं पता है. अब सब लड़ाई करने बैठ जाएंगे ना तुरंत ही, क्या है जैन धर्म स्त्रियों फीमेल्स को डिग्रेड करता है, यहाँ पर इनइक्वालिटी है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है और ये और वो है. आपने तो अपनी बात बोल के चले गए. यहाँ पर तो पूरा धर्म बदनाम हो गया ना. जो धर्म चींटी में और अरिहंत में डिफरेंस नहीं देखता है, वो मेल और फीमेल में डिफरेंस देखेगा?
नहीं,
कैसे देख सकता है? बट आपने बोला, आपको तो पता नहीं था, आपने तो बोल दिया, और आप शायद सही बात भी बोल रहे थे, क्या ऐसे ही है, हम दीक्षा नहीं ले सकते इसके, यहाँ पर वो भगवान की प्रतिमा को कैसे छुएंगे, ये भी नहीं है. बट उसका लॉजिक अलग था और उसकी ऑडियंस अलग थी. ये पब्लिक को बताने का विषय थोड़ी था. जैसे कि अभी इतना बड़ा संसारा का हुआ था, नहीं हुआ था, किसका, सल्लेखना का, समाधि मरण का, कितना बड़ा हाई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आ गई, हाई कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, राइट? हुआ था, नहीं हुआ था? ओनली रीजन वॉज कि यार आप एक डेथ को ऑन अ लोकल प्लेटफॉर्म पर ले गए. एक्चुअली ऐसा हुआ, श्वेतांबरों ने क्या किया, श्वेतांबरों ने ये किया कि वो लोग, अपन क्या मृत्यु को महोत्सव बोला है ना, तो उन लोगों ने ये समभिरूण और शब्द ने की बहुत बड़ी एक डिफरेंस गैप है. महोत्सव को उन्होंने समभिरूण ने से ले लिया. महोत्सव मतलब क्या होता है, दिवाली पर अपन लोग पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयां खाते हैं, राइट? होली पर अपन लोग होली खेल लेंगे और एकदम मस्ती का माहौल. तो हमारे जैन ग्रंथों में क्या बोला, मृत्यु तो महोत्सव है, ठीक है, सब लोग बोला बढ़िया बढ़िया है, मृत्यु तो महोत्सव है. एंड दे लिटरली स्टार्टेड हैविंग पार्टीज. क्या करते थे, जबरदस्ती अपने बूढ़े मम्मी पापा को, मम्मी पापा बूढ़े हो गए, कुछ नहीं बचे, उनकी स्थिति है जबरदस्ती, अब उनको तो कुछ होश नहीं है, इन लोगों ने उनको क्या दिला दी, संलेखना दिला दी, ठीक है, समाधि मरण दिला दिया. अब वो लोग खाना मांगते हैं, प्यास लगती है, तो कुछ नहीं लेते तो उनको बांध देते हैं, ठीक है, लिटरली चेयर से उनको बांध दिया उन लोगों ने. और अब क्या होगा, पूरे समाज के लोग, अब इनके क्या हो रहा है, ग्रेट संलेखना हो रही है, तो संलेखना लेने वाला जीव तो बहुत बड़ा, और श्वेतांबरों में तो भैया वो मोक्ष चला जाएगा दो तीन भव में, उनका तो ऐसा मानना है जिसने संलेखना कर ली, ठीक है. तो सब लोग आते हैं, सब लोग उनके घर में आते हैं, सबको बधाई देके जाते हैं, उसके पास बैठते हैं, अच्छी भक्ति करते हैं और एकदम प्रसन्न, खूब खूब प्रसन्न होकर, आपने तो संलेखना ले ली, संलेखना ले ली, संलेखना ले ली। अब वो बंदा, उसके अंदर में वैराग्य नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उसको पूरी भूख लग रही है, उसको पूरी वेदना है। तो एक्चुअली इट्स अ मर्डर दैट यू आर डूइंग, राइट? आप खाने, जिसको खाना उसको खाना नहीं दे रहे हो, आप जबरदस्ती नियम दिला रहे हो। तो कुछ लोगों ने, जब बाहर के लोगों ने उसको देखा कि क्या तमाशा चल रहा है धर्म के नाम पर, तो उन्होंने सीधे जाके केस कर दिया कि भैया ये लोग तो मर्डर कर रहे हैं। वो गलत नहीं था उनका केस, व्हाट दे सॉ उन्होंने उस पर केस किया, वो बहुत क्रूअल था। ऐसा जनरेशन में कोई वर्णन नहीं है। भैया महोत्सव मतलब ये आत्मा का उत्सव है, जिसमें आप शरीर को मस्ती करके थोड़ी चलेगा, आप डांस कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, ये थोड़ी उत्सव है। आत्मा का उत्सव तो कषायों के क्षीण होने से होता है। आप भेद विज्ञान करो, ये आत्मा का महोत्सव है। संलेखना में कषाय क्षीण की जाती है। तो उन्होंने उस महोत्सव को रूढ़ी से समझकर उसको पूरा एक आयोजन का नाम दे दिया। सब खुश हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, सामने वो जीव मर रहा है, संगीत पंचेंद्रिय मनुष्य गति का जीव, और सबको मजा आ रहा है। वह वैराग्य पाठ पढ़े कोई उसके सामने, समाधि मरण पाठ पढ़े, नहीं, सब उसको भैया बहुत बहुत अनुमोदना, हम आपके अनुमोदना करते हैं, आपने समाधि मरण लिया। अरे आप क्या कर रहे हो, किससे बोल रहे हो, उसको पता नहीं पता, वो जीव जाने वाला है, आखिरी समय उसके परिणाम बिगड़े तो पूरी गति बिगड़ेगी, उसके जीवन भर की आराधना बिगड़ेगी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसके सामने। आप उसको एकदम, आप जैसे कि बहुत ज्यादा भूखे होते हो और आपके सामने कोई तेज म्यूजिक चल रहा है तो आपको कैसी इरिटेशन होती है। अब वो भूखा प्यासा बैठे और आप सब आकर उसके सामने भक्ति कर रहे हो तेज तेज, वो पागल नहीं हो रहा होगा अंदर से? आप कुछ तो सोच के देखो। तो लोगों ने इस एक उपदेश को कि मृत्यु महोत्सव है, शब्द नए से ना लेकर कि यहाँ पर कौन सा अर्थ लगेगा, समभिरूण में से जिसको वो महोत्सव मानते थे उससे लिया और गड़बड़ हो गई। दूसरा समभिरूण में का एग्जाम्पल जो द्रव्यलिंगी मुनिराज के साथ होता है, क्या नग्नत्व ये दिगंबरत्व है, लोगों ने मान लिया और अब क्या करते हैं? ये तो हमने जो आपको बताया ना, ये घटना श्वेतांबरों की बताई। दिगंबरों में क्या होता है? दिगंबरों में ये होता है कि अब मुनिराज लोग होते हैं, अब कोई बहुत बूढ़े माता पिता हो गए तो बच्चे उनको ले जाते हैं, और माता पिताजी हैं तो उनके अंतिम समय पर जैसे कि एकदम मरने वाले हुए, लाइक डॉक्टर्स ने बोल दिया भैया एक दो घंटे में चले जाएंगे, एक दिन दो दिन के मेहमान है, तो बच्चों को क्या रहता है, मम्मी पापा की इतनी गजब की भक्ति होती है, ठीक है, कि वो जाएंगे महाराज जी के पास ले जाएंगे और अपने पापा को तो कपड़े उतरवा के दीक्षा दिलवा देंगे और मम्मी को आरिका बनवा देंगे। अब क्या होता है, क्या होता है, उनसे खड़े होते भी नहीं बनते क्योंकि वृद्ध अवस्था है, तो 28 मूल गुण तो गए एक साइड, खड़े होते नहीं बन रहा है उनसे, केश नोच तो क्या करें वो, तो वो लोग जबरदस्ती आखिरी टाइम, वो बंदा डेथ बेड पर है जहां पर आप उसके परिणामों को शांत। अरे यार, पार्श्वनाथ मुनिराज ने जलते हुए सांप नाग नागिन को रमुकारमन सुनाया था, वो भवनत्रिक में चले गए, तो तुम तो पंचेंद्री जीव को चार बातें सुनाओगे तो वो तो अपने आप शांत हो ही जाएगा। अब तुमने आखिरी में अपने मोहवश, और फिर अपने घर पर फोटो टांगेंगे हमारे मम्मी, और बताएंगे आप जितनी बार उनके घर जाओगे, लिटरली मुझे, मैं गया एक जन के घर, उन्हें भैया हमारे यहाँ तो अच्छा मम्मी पापा की समाधि होगी, आखिरी में उनको मुनिराज जी के पास ले गए थे और मुनिराज ने दीक्षा दे दी थी। सबसे बड़ी बात तो ये है, स्ट्रिक्ट रूल है, मुनिराज को आचार्य दीक्षा ऐसे नहीं दे सकते, स्ट्रिक्ट भगवती आराधना में रूल है, बट वो दे देते हैं क्योंकि उनके भक्त बोल रहे हैं, वो करते हैं। तो दिस इज नग्नत्व को आपने दिगंबरत्व माना, ये आपने समभिरूण नए से गड़बड़ कर दी थोड़ी। शब्द नए से नग्नत्व मतलब अंतरंग कषाय से नग्नत्व होता है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, वो दिगंबरत्व है। आपने अर्थ लगाया कि शरीर में जिसके कपड़े उतरे हों वो दिगंबर, और आपने जिस चाय के उतार दिए और उस चाय को दिगंबर मुनि बना दिया, ये समभिरूण नए का दुरुपयोग हुआ। तो समभिरूण नए से वही वाली चीजें अर्थों को ग्रहण किया जाता है जो समाज में न्याय नीति से चलती हों, जो व्यभिचार का पोषण करती हों, उनमें समभिरूण नए नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। वो रूढ़ियां हैं, वो कुरीतियां हैं, उन पर आप नहीं बोल सकते कि ये कस्टम है ऐसे ही चलता है, नो। जैसे सती प्रथा थी उसमें लोगों को जला देते थे, जो भी जैसे किसी का पति मर गया तो जबरदस्ती पत्नियों को जला देते थे। तो एक्चुअली इसकी ओरिजिन ये है, जब मुगल्स इंडिया में आए तब यहाँ पर जब राजपूत लोग थे राजस्थान वगैरह में, तो इन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया, से पूरे गांव किंगडम का किंगडम इन्वेट कर लेते थे। अब सारे इन लोग के पति लोग तो मारे गए, तो वो लोग क्या करते थे, मुगल लोग मोमेडन थे, तो वो लोग उनकी पत्नियों को जबरदस्ती उनको किडनैप कर लेते थे, अपने पास रख लेते थे। तो पहले शील धर्म की इतनी इम्पोर्टेंस थी कि सबसे पहले जो रानी थी वहां की, महाराणा प्रताप के दादा मान लो आप, दादा के दादा जो भी पुराने राजा थे, तो जो पहली रानी थी जिन्होंने कार्य स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या किया, जब युद्ध में उनको पता पड़ा जैसी न्यूज मिलती थी कि सब लोग हार गए हैं, तो वो लोग जैसी जहां पर इन लोग की इन्होंने अग्नि लगाई और सारी की सारी, तो फर्स्ट जो अग्नि पर कूदी थी जिंदा जिंदा अपने शील धर्म की रक्षा के लिए कि हमारे कोई दूसरा जबरदस्ती हड़प करेगा, इससे अच्छा हम लोग खुद ही मर जाए। और वो लोग 50,000 एट अ टाइम, शायद मैं कम बोल रहा हूँ ज्यादा ही होंगे, 50,000 एक साथ उधर की उस गांव के लोगों ने एक साथ अग्नि पर कूद गए थे। ऐसे तीन बार हुआ मार, वहां पर इंटेंशन वॉज टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम मुगल लोगों की दुराचारों से, ठीक है, और वो उनका सती धर्म था वो सही था, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, अब मुगल तो चले गए, लेकिन लोगों ने देखा भैया देखो क्या हो जाता है, जिसके पति मर जाते हैं वो लोग भैया आग में कूद जाते हैं। तो अब ये लोग जैसे जिसका पति मरता था उस लड़की को पकड़ पकड़ के लाते थे गांव के सारे लोग, और उसको पकड़कर उसकी पति की चिता पर फेंक देते थे जिंदा। इसको बोलते थे सती प्रथा, ये बोलते थे हमारे यहाँ तो यही होता है, ग्रंथों में यही है, ग्रंथ किसी ने नहीं पढ़े, कुछ नहीं हुआ। तो जिसकी इच्छा नहीं है आप उसको, आपको मारने का, उसको धर्म कराने का आपको क्या अधिकार है। तो समभिरूण नय कुरीतियों में नहीं चलता, समभिरूण नय उसमें चलता है जिसमें यू नो जो नॉर्मल हो, जिससे आपका लोक व्यवहार चल पाए। आप लोक व्यवहार में हंसी के पात्र नहीं बनो, वहां पर जो अर्थ होता है वो वाला अर्थ लगाओ, ये समभिरूण नय का कहना है, ठीक है। इसका एक बस आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम कंट्रास्ट डिफरेंस बिटवीन शब्दनय एंड समभिरूणनय। आपको कोई लोक में निकम्मा बोल दे तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा?
बुरा
निकम्मा, ये तो निकम्मा, ये तो निकम्मा है बराबर। ये समभिरूणनय से आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि लोक में जो कोई काम का नहीं होता उसको निकम्मा बोलते हैं, बराबर। अब नेमीचंद्र आचार्य ने द्रव्य संग्रह में सिद्ध भगवान को निकम्मा बोला, निकम्मा निकम्मा अष्टगुणा निकम्मा। अब वहां पर उधर पर शब्द ने से बात करी, सिद्ध भगवान निकम्मा बिना कर्म के हैं, निष्कर्म हैं, आठ कर्मों से रहित हैं, इस कारण भी निकम्मा निष्कर्म हैं। तो शब्द ने से उनकी स्तुति हो गई, वही शब्द समभिरूणनय से लोक में गाली है, वही शब्द शब्दनय से बहुत बड़ा भगवान का विशेषण है। आपको डिफरेंस समझ में आया शब्दनय का और समभिरूणनय का? तो समभिरूणनय में आप किसी को एडजेक्टिव देने की, अरे यार तुम तो निकम्मा हो, आपका मतलब है कि सिद्ध भगवान जैसे होगे, आत्मा निष्कर्म है, निकम्मी है, लेकिन आपने राह चलते आदमी को बोल दिया भैया सब सिद्ध जैसे है, तुम भी निकम्मे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो सिद्ध नहीं है अभी, उसको सिद्ध का ज्ञान नहीं है, वो शब्द नय नहीं जानता, वो आपसे लड़ जाएगा कि आपने मुझे गाली क्यों दी, आपने गाली नहीं दी, आपने शब्द नय से बोला। लेकिन लोक में आपकी जिम्मेदारी है, आप समभिरूण नय का ज्ञान करते लोक में क्या प्रचलित है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें, मिक्स नहीं करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आगम में जिस नय का, जिस शब्द का जैसे प्रयोजन है, आपको देखना पड़ेगा रूढ़ी से इनको बोलना है या शब्द नय से बोलना है। मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं सीता जी के साथ जो ट्रेजेडी हुई वो बताऊंगा, लेकिन अभी अपना टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला एवं भूत नय और रह गया है इसको कंप्लीट करके शब्द नय और समभिरूणनय में सीता का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। ओके चलिए अभी जिनमी करते हैं, एनी डाउट एनीबडी हैज इन नयों में प्लीज बताइएगा। ऋजु सूत्र नय में कुछ भी नहीं, आपको उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या अर्थ है, कुछ भी नहीं, जो दिख रहा है बस वो बोल दो, वो ऋजु सूत्र नय का विषय, ठीक है। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति, समीर जिनवाणी स्तुति कराए।
जवानी के ज्ञान पे तुझे लोक लोक भवानी में सुख सदा दंत हो जाओ।
नमस्कार।